स्पाइस रेडियो और रेडियो रमझम सुन रहे हैं आप। गपशप का प्रोग्राम है। हमारी घड़ियों में बाद दोपहर के 2:07 हुआ जाते हैं। अब से लेकर 3 तक आपका और हमारा साथ रहेगा हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम बड़े प्यार से हमने गपशप रखा है, क्योंकि इसमें वो सभी बातें जो आज आपकी नजरों में अटकेंगी,
खटकेंगी
और समाएंगी
कहां
दिल में
उन सबको लेकर हम हाजिर हैं। ये बताते हुए कि हमारे साथ सनी हु हैज द बायर्स और निधि हु हैज द मनी, वो दोनों हमारे प्रोग्राम में आज हैं। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पैसा, छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे हैं आप दोनों?
वी आर डूइंग ऑसम।
सो हाउ वाज योर स्प्रिंग वेकेशन? बच्चों के साथ कहीं बाहर गए आप?
बच्चों के साथ तो जा नहीं सके, बीवी को जरूर ले गया था। इसका जन्मदिन था 21 मार्च को।
अच्छा,
सो आई टुक हर आउट।
और कहां गए?
वी वेंट टू स्कॉट्सडेल, फीनिक्स।
अच्छा,
इट वाज प्रीटी ऑसम। वी ओनली वेंट फॉर 2 डेज।
अच्छा,
क्योंकि बच्चे अकेले थे।
राइट।
और एक हमारे पास छोटा डॉग भी है।
अच्छा, उसके तीन बच्चों को छोड़ के आप?
हाँ जी, हाँ जी।
बट इट वाज अ गुड टाइम।
इट वाज अ गुड।
इससे पहले कि कोई किसी कोई कॉल करे, मेरे बच्चे अपनी अपनी मासी के पास थे। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि वो अकेले घर पर नहीं थे और उनमें से एक एडल्ट है, जस्ट इन केस।
चलिए, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सो यू नो, उठा के किसी दिन उसको कह भी सकता है। कल हमारे स्टेशन में आज शाम को उनका इंटरव्यू हम लगा रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पियर पॉली पॉली आए हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं यार? हर कोई इसको बुचर करता है। बोले मेरे को उसका कोई फिक्र नहीं है, जिस दिन इलेक्शन डे होगा मेरे नाम के साथ क्रॉस द रोड लगा देना, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। तो मैंने उनसे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि 1 अप्रैल को लिबरल सरकार ने किस तरह से सबको बेवकूफ बनाया, कितने पैसे लोगों से लिए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो ही वाज मेंशनिंग ऑल दैट, तो मैं सुनती रही चुपचाप। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैंने उनसे कहा कि वो इतना तो खराब नहीं था 1 अप्रैल आप लोगों के लिए। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 4.6% इंक्रीमेंट मिला है। तो जस्टिन ट्रूडो बैठे हैं $406,000 पर ईयर की कमाई पे, और आप बैठे हैं 299,900 पे। तो ये तो बुरा नहीं है। तो कहने, अगर वो कहता कि हम कैप करना चाहते हैं तो मैं हामी भरता।
अच्छा,
तो मैंने कहा आपने उनसे कुछ कहा कि हम नहीं लेना चाहते पैसे? बोला नहीं। तो मैंने कहा आपको कहना चाहिए ना कि हम सब लोग तो, हमें तो 4 साल से इंक्रीमेंट ही नहीं हुई। हम किसी को रेज ही नहीं दे पाए कोविड की वजह से। उसके बाद अब इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ी, आप लोग 4.6% पे ले भी लिया,
आपने रेज भी ले लिए। सही बात है।
should I be returning it and saying to him put a cap? I said yes, that would be the prudent thing to do. तो चुप कर गया बेचारा।
चुप रहने में भलाई है
उसकी, तो इसी में भलाई है।
उसने अब क्रॉस भी तो लगवाना अपने नाम के।
I know, चाहे वो पॉलीएव हो या पॉलीवेयर हो,
पॉलीवेयर हो,
कुछ भी हो, you know, it's interesting. तो you know, economy has been the main focus everywhere. बहुत सी बातें हर पॉलिटिशियन करता है, हर पॉलिटिशियन इसके बारे में बताता है, but the real people who are concerned about it is the regular job लोग। आप लोग जो कि लोगों की मदद करते हैं, घर खरीदें या you know, आप इकोनॉमी में किस तरह से अपने पैसे बचा के कहीं और खर्च कर सकते हैं, तो ये आप लोगों का काम है, आप करते हैं, एंड यू फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट। सो हाउ इज द, एक बात जो पॉलिटिशियंस हमेशा करते हैं, दैट्स अबाउट परमिट्स वगैरह की, उनमें बहुत टाइम लगता है कि परमिट्स में टाइम लगा, उसके बाद जगह आप शुरू करते हैं प्रोडक्शन किसी घर की, कितना टाइम लगता है उसमें। तो हर कोई कहता है हम घर बनाएंगे घर बनाएंगे, तो घर आज आपने कह दिया कल तो बन नहीं जाएगा
ना,
है ना? अगर आपने बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो कम से कम 3 साल तो लगते हैं उसे के लिए।
यस,
इजीली
इजीली लगते हैं।
सो फ्रॉम द टाइम दैट जो जमीन में नींव रखते हैं और जब तक आप उस घर में घुसते हैं, 3 साल तो इजीली कहीं नहीं गए ना। तो आज जब आप बात कर रहे हैं तो 3 साल के बाद वो सारी चीजें पूरी होंगी। हाउ डू यू हु आर इन दिस इंडस्ट्री सी के विल बी एवर बी एबल टू जिस तरह से हमारी इमिग्रेशन यहाँ बढ़ रही है, विल बी एवर बी एबल टू रीच दैट पॉइंट कि हर एक के पास घर है?
देखो ये तो व्हेन अ कंट्री इज ग्रोइंग दिस विल ऑलवेज बी अ चैलेंज.
तो हमेशा चैलेंज ही रहेगा.
हाँ, व्हेन द कंट्री इज ग्रोइंग मोर पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू दिस प्लेस दे विल ऑलवेज बी हाउसिंग चैलेंज विल ऑलवेज बी देयर राइट, बिकॉज वो मैचअप करना बहुत मुश्किल है. अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम दुबई की बात करते हैं, दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइन सिस्टम. वहां पर अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो पहले से ही उन्हें पता होता है कि ये बनते साथ ही ऑक्यूपाई हो जाएगी साथ के साथ ही. If they know that the building will not be occupied, they will put a stop on it. That you cannot build it. It means they have done a very fair calculations कि कितने लोग आ रहे हैं और वो building, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई building खाली रहे. Right? There are some 5-6 big builders over there and those are the only ones who make it. But it's a very fair calculation that if they sense that it will be left unoccupied, वो फिर उस country का नाम भी खराब हो रहा है, सभी economy का खराब हो रहा है, सभी कुछ. They don't want it, right? So they will not allow any new permits to be happening. But if they see there is a big demand of more people coming in, their permits become super duper fast. They try to get things streamlining fast. That's the problem over here. कि यहाँ पे अगर पता भी है और everyone knows, ये जितने भी चीजें चल रही हैं आज की डेट में, ये टेनेंसी की नई इश्यूज चल शुरू हो गए हैं, परमिट्स के हैं, लेन वे हाउसेस बनने हैं, या एक देयर इज टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. एंड व्हेन वी लुक एट कि मेन चीज है क्या, इट इज स्पेस टू लिव राइट. एक घर चाहिए हर एक इंसान को रहने के लिए. सो नाउ द पॉइंट बीइंग इज अबाउट द परमिट्स. जो जैसे आपने बोला कि एक बड़ी बिल्डिंग को बनने में 4-5 साल लगेंगे, दैट इज द कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम. वो तो जो कंस्ट्रक्शन होनी है उसको तो टाइम लगना ही है. लेकिन यस, आई डू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दैट कंस्ट्रक्शन फेज देयर इज वेरियस डिपार्टमेंट्स विच कम इन टू प्ले एंड सम ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द सिटी वेयर सम थिंग्स माइट गेट बीइंग डिलेड in verifying if the construction is happening in a timely fashion or not. So they have to approve a lot of things. And same is with the building permits as well, where a lot of things are getting delayed at the city level. Basic drawings hi kuch hain, unhi ko approve karne ke liye city ko 3-4 mahine lag rahe hain. That's what's going on, which is a delay in the whole process. The more time it is taking to get the houses built and ready, ये affordability का challenge चलता ही रहेगा.
Right. So आपने दो तीन चीजें और इसके साथ कहीं, you know, laneway housing, you know, और वैसे भी घर किस तरह से बनाने हैं, rentals का जो issue आजकल चल रहा है. मैं rentals के issue के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, because सरकार भी उसके बारे में बात करती है. People are, of course, वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जो लोग रेंट कर रहे हैं किसी का घर, उनके पास अपना घर नहीं है. सो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं कभी कभार वो अच्छे लोग नहीं होते, कभी कभार, हमेशा तो नहीं, लेकिन टैलेंट्स भी हमेशा अच्छे नहीं होते. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली. तो ये इशू क्या चल रहा है, इसका समाधान कैसे होगा?
देखो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कैनेडा में जो भी आया आते साथ वो कहीं ना कहीं किसी के रहे हैं एज अ टेनेंट एंड देन दे हैव बॉट अ होम. सो लैंडलॉर्ड कभी ना कभी टेनेंट जरूर था कनाडा में, राइट? सो द लैंडलॉर्ड्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट? टेनेंट्स का पेन भी वो समझते हैं. इफ द टेनेंट इज गुड, व्हाई वुड द लैंडलॉर्ड एवर लेट देम लीव?
एग्जैक्टली,
राइट? सो नाउ इन द पास्ट इन बिफोर 2017 टेनेंसी में होता था, फिक्स टर्म टेनेंसी होती थी. वन ईयर की फिक्स टर्म टेनेंसी और 2 years फिक्स टर्म टेनेंसी, एंड आफ्टर दैट टर्म इज फिनिश्ड द टेनेंट हैड टू लीव और दे हैड टू साइन न्यू टेनेंसी पेपर्स. बट दैट रूल्स चेंज्ड. नाउ देयर इज नथिंग लाइक फिक्स टर्म टेनेंसी, इट इज जस्ट अ ब्लफ. यू हैव अ रेजिडेंशियल फिक्स टर्म टेनेंसी. After that 1 year has finished, you cannot say that the tenancy has finished. You have to leave. It automatically gets continued as a month to month.
Really? After that?
That's what it is. So there is nothing like fixed term tenancy in a residential thing nowadays. There's a box over there where you initial. Still the person cannot, let's assume it is my house.
Yeah.
मेरे को पता है कि मैं एक साल के बाद वहाँ पे move in होऊंगा.
Right.
मैं अगर वो tenant को दे देता हूँ.
Yeah.
For one year. After one year, I cannot.
Kick the tenant out.
I cannot tell the tenant to move out. Right, because it automatically rolls into month to month. And after that time, I have to prove that I am occupying it for myself.
Hmm.
I have to give 2 months notice,
hmm.
1 month's rent back. All those things are into play. And what if the tenant says that this landlord doesn't want to move in, even though I want to move in?
Yeah.
If he says, yes, Sunny doesn't want to move in,
right.
It's all a fake.
Yeah.
He's going to go into the tenancy board and he's going to complain.
Right.
And now, tenancy board is so slow in acting कि जो चीज पहले 2-3 हफ्तों में होती थी आज की डेट में वो 18 वीक्स तक पहुंची हुई है.
Oh my God.
So the tenant is dragging those things for weeks and weeks and weeks because the system is slow.
Actually, yes.
Right? And they know the system is slow. और होता क्या है वो tenant 18 महीने तक आराम से रहा. अब उसके बाद अगर उसने किराया नहीं दिया फिर who's gonna pay the landlord? Hmm. Is the government paying the landlord for those months? No.
No, of course
the
not.
Landlord has to still pay the mortgages. Right? And 3-4 महीने अगर तुम mortgage नहीं pay कर पाए, you know, the bank's gonna come at it right away.
So, in other words, they're making it difficult for people to even rent their own places because people are so scared.
Yes.
I'm gonna tell you a fact. At this moment, currently, अभी तो ये नया रूल अभी आया नहीं है
जी.
इससे पहले की बात कर रहा हूं. 1/3 ऑफ द होम ओनर्स दे आर नॉट रेंटिंग देयर सुइट्स इवन दो दे गॉट एन एम्प्टी स्पेस इन देयर हाउसेस. दे आर नॉट रेंटिंग बिकॉज दे बिलीव दैट द टेनेंसी लॉज आर नॉट फेयर. अब ये नए लॉज आने के कारण वो और अनफेयर होता जा रहा है.
Okay.
So you can imagine कि ये 1/3 could be possible 2/3 बन गया. So they are doing all this for affordability of living, right? But now the units are reducing because people don't want to rent it.
So the new changes.
Yeah.
Landlord ending tenancy for own use must occupy a rental unit for 12 months.
Yeah. So पहले ऐसे था कि let's assume I say that I want to, I tell the tenant you have to leave. Because either me or my close family member, my son, daughter, whoever, they want to occupy this property in a good faith.
Mm.
So I used to, so the landlord used to give 2 months notice.
Right.
For landlord use of property for own living.
Mm-hmm.
And they had to give 1 month rent back.
Mm-hmm.
Right. Ab jab hum move in karte hain, kai log, it's not true that they will move in. It might be an excuse. Wo landlord ne jhoot bola. Could be possible. To save that, they said that you have to stay in that property for 6 months. Now, they are thinking of increasing that to 12 months.
I see.
So, that's fine. That's fair enough.
Yeah.
Ki agar aapne notice diya, it has to be a genuine notice, right? Mm. Because you really want to move into that property. And there is a fair reasoning that you would not stay in that property. Right? Ab main recently ki baat batata hun, one of my clients... he has been renting his property since, I think so, 2012 or 13. Right? It's a big house.
Hmm.
He has only rented it for $1,700.
Hmm.
That's it. It's a big house, right? And now he gave a notice to the tenant that my son wants to move in because he's going through some health issues.
Hmm.
And we will be selling his townhouse. And now he's going to move into my house. Itself, right? Mm. And the tenancy board refused it.
Because?
Because they think that it's not a fair reasoning.
But mera ghar hai, mera bachcha move.
Wohi to hai, wohi hai na. So mera ghar hai, mere bachche ne move na, aur hum tab bhi nahi move ho pa rahe. And that tenant is at a big benefit.
Yeah.
Why? Because agar wo kahin aur jata hai,
$1,700 mein to
nahi milega, usko $3,500 dene padenge, 3,000-3,500. So wo, he's laughing.
Hmm.
Right? That's the point over here. And now my client wants to do all this so that he can save on all this. Ab beta hai, uske health issues hai, he cannot afford his mortgage.
No. No.
So that townhouse will be sold. And now he's going to move into his own son's, own dad's house.
Yeah. Isn't that right? Just...
So that is not fair enough. So they're thinking of increasing that from 6 months to 12 months
12
now.
Months.
That the landlord or their close family member has to occupy the unit for 12 months. Right? और जो नोटिस पीरियड भी है वो भी बढ़ाना चाहते हैं.
अच्छा.
सो 2 months नोटिस को दे वॉन्ट टू इंक्रीज इट टू इधर 3 months और 4 months नोटिस. सो नाउ यू कैन इमेजिन वी रियल एस्टेट एजेंट्स व्हेन वी हैव टू सेल अ हाउस विच इज टेनेंट ऑक्यूपाइड और नया बायर जो है वो उस घर को अपने यूज के लिए रखना चाहता है. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 months नोटिस नाउ इट हैज टू बी 3 to 4 months notice. It means
how so delay us, further delay in occupying.
So it is it's going to delay our completion process. So pehle hum sale karte the, we could have said that we want an empty possession of this home within 2 months because we have to give 2 months notice. But now if the government is saying that is being extended, now the completion has to be extended to 3 to 4 months. Less from the government says 4 months.
Yeah.
So अब 4 महीने की completion करनी पड़ेगी. If I sell a home today in April,
yeah.
April won't be counted uh-huh. as a notice.
No.
May, June, July, August end.
हाँ.
May वो घर खाली होएगा.
फिर जाके
for the new buyer. For the new buyer.
हाँ.
And 4 महीनों का अगर है, bank के जो rates हैं, bank is giving an approval of a mortgage. It is only good for 3 months.
Right.
So the point being is the government is doing all patch up. Jobs, they are not putting all the things together. Their checkbox is not getting complete. They have to work with all the departments and figure out how this has to be worked.
And there's a, sorry, yeah, go ahead.
Yeah, so that's what they are doing for the notice, for the occupancy. So 2 months could be increased to 3 months, 4 months. We do not know yet what's right. going on. And another interesting aspect coming is they want to set up a web portal. जब भी आपने एविक्शन देनी है यू हैव टू पुट द होल एप्लीकेशन इनटू अ वेब पोर्टल विच इज गवर्नमेंट विच इज चेक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. दे गोना सी कि कौन से बंदे ने कितने बार लोगों को एविक्ट करवाया है. दे वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि कौन सा लैंडलॉर्ड 10 सालों में कितनी बार एविक्शन करवा चुका है. इट मीन्स It is violating some of your privacy rights as well, right? They want everything like a data collection.
Yeah.
They want to collect all the data.
According to them, it's transparency rule.
Yeah, and they can come after you anytime. Right? So these are some new things which are coming into play. And rent
cannot be changed.
So this is what it is. So yes.
So अगर उनके बच्चे हो जाते हैं.
अगर उनके बच्चे हो जाते हैं या 19 सालों से कम का कोई बच्चा है. उनकी फैमिली में एड अप होता है. हाँ. तो रेंट तुम नहीं बढ़ा सकते.
हालांकि उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा यूज करोगे, पानी भी ज्यादा यूज करोगे, सब कुछ.
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ देयर इज अ बैड टेनेंट एंड दे वांट टू अब्यूज एनी ऑफ दीज रूल्स, लेट्स सी ये अंडर 19 वाला जो रूल है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. इफ आई गो सुषमा जी आपका घर किराए पे है, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक बेटा है, वी विल बी ऑक्यूपाइंग दिस प्लेस, राइट? आई एम अ न्यू इमिग्रेंट एग्जांपल. आपने बोल दिया ओके, बेस्ड ऑन दिस मैं आपको ये स्वीट दे रही हूँ $2,500 $2,500 में, राइट? ये नहीं पता ना कि महीने बाद 2 और मेरे बच्चे मूव इन हो रहे हैं.
हाँ.
वो भी इंडिया से आ रहे हैं. एग्जाम्पल. सो अब वो 3 के बजाय 5 हो गए ना. अब बेस्ड ऑन दिस रूल एनी फैमिली मेंबर हु इज स्टेइंग एट द सेम प्लेस अंडर द एज ऑफ 19 और गेट्स एडेड इनटू द फैमिली, व्हाट्स गोना हैपन विद दैट? व्हाट इफ आई अडॉप्ट किड्स अंडर द एज ऑफ 19
और सो दे स्टार्ट फॉस्टरिंग किड्स. फॉस्टरिंग प्रोग्राम है राइट? फॉस्टरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि आई डू गेट लॉट ऑफ क्लाइंट कॉल्स कि वी फॉस्टर किड्स इन tenanted properties.
Oh my god.
So they have to come up with all this because right now these are just the new things which they have proposed, but they need to weigh in all the options. It's not only one aspect to it, so there's a lot of things going on, but we will talk about it after
a short commercial break.
Yes
yeah, let's take a very short commercial break and come back. क्योंकि एक कमर्शियल ब्रेक तो हम मिस कर गए, तो ये 2 कमर्शियल ब्रेक के बराबर होगी. बट वी आर टॉकिंग टू सनी एंड निधि. अगर आपने इनसे कोई सवाल पूछने हो तो आप बड़े शौक से फ़ोन कर सकते हैं. इन द मीन टाइम लेट मी गिव देयर टेलीफोन नंबर्स आउट. अभी मत फ़ोन करना बिकॉज वो प्रोग्राम में हैं. सनी का है 778-234-2000 और निधि का है, अगर आप इनसे मॉर्गेज वगैरह करवाना चाहते हो तो 604-999-0111. स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप. गपशप का प्रोग्राम है. हमारे साथ आज निधि भिंडर और सनी भिंडर हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अगर आप टेनेंट हैं या आप लैंडलॉर्ड हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा सुनने के लिए. तो प्लीज़ डू कीप लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव अ मिनट, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर हमें फ़ोन भी कीजिएगा 604-280-1200 या 604-299-8863. सनी, आप कह रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो चुकी हैं, उसी तरीके से टेनेंट्स के लिए भी तो डिफ़िकल्टीज़ हैं आजकल अगर देखा जाए तो. आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ जस्ट रेंटेड अ हाउस फॉर $5,000 अ मंथ. पहले तो मुझे आप ये बताइए कि $5,000 किसी एक घर के लिए पे करना, यू हैव टू हैव एटलीस्ट ओवर $120,000 की आपकी इनकम होनी चाहिए कम से कम, तभी आप पे करेंगे ना. हाउ कैन यू पे फॉर अ हाउस फॉर $5,000? तो वो भी एक सवाल उठता है.
बिल्कुल सही बात है.
यू नो, तो दोनों का किस्सा जो है सेम है. टेनेंट्स भी अब्यूज करते हैं एंड लैंडलॉर्ड्स भी अब्यूज करते हैं. तो इन तो आपने दो तीन बातें बताई हैं. एंड रवि कालो इज सेइंग कि टेनेंट शुड नॉट लूज देयर होम इफ द लैंडलॉर्ड इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ. वो भी एक बहुत ब्रॉड एंड ओपन टॉपिक है.
बिल्कुल सही बात है. सो देखो, ऐसा है कि देयर इज अ पॉइंट, व्हाई इज द लैंडलॉर्ड आस्किंग मोर रेंट.
हाँ,
the reason behind that is that the price of houses have gone so up and the interest rates are so high that the per month payments are off the roof. Right, our landlord apni jeb se kab tak manage karta rahega? He has to one way or the other increase the rent, or they are using manipulative ways of making sure the tenant leaves and the new tenant comes in at the new rates. So it's they are trying to survive. Otherwise, they have to dispose of the properties.
Right.
That as simple as that. And another thing is, ab landlord agar mortgage nahi bhar pa raha, the payments are off the roof, they are pushing off that cost and expense to the tenant. That's why wo tenant ka jo rental hai, wo bad gaya. It has gone over there. So when we look at it, it's mainly the affordability issues coming along over here. Right. अब देखो, इट हैज़ टू बी फेयर ग्राउंड दैट दी सबके लिए, टेनेंट्स के लिए भी फेयर होना चाहिए, उनको घर चाहिए रहने के लिए, एंड लैंडलॉर्ड्स के लिए भी होना चाहिए. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कम विद सम काइंड ऑफ अ मेजर एज वेल. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर टेनेंट अगर इतना किराया भर रहा है, वट एवर हैज गॉन इन टू द रेंट, इज द गवर्नमेंट गिविंग एनी टैक्स ब्रेक्स?
राइट, एग्जैक्टली.
दे शुड पुट समथिंग मोर.
यस, यस.
अगर लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड प्रूव्स कि मेरी देखो मॉर्गेज इतनी है और मेरे को रेंट इतना आ रहा है, देयर इज अ डेफिसिट, इज द गवर्नमेंट गिविंग एनी टैक्स रिलीफ ओवर देयर?
राइट,
नो, दे आर नॉट.
दोनों को नहीं दे रहा,
कोई कुछ नहीं है ना. सो देयर इज नो मेजर फॉर दैट. सो द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन सम काइंड ऑफ अ वे सो दैट इट कैन बी डन. लाइक इन यूएस इन सम स्टेट्स, द मनी विच यू आर पेइंग टुवर्ड्स योर मॉर्गेज पेमेंट्स, the interest which you have paid, you can write off.
Yeah, whether you're
with your income,
with your income, right? You can write off.
Right, so it, in US, that's how it is in a lot of states, right? So is it in Canada something like that? Nothing.
Actually, in the last little while, the federal government has increased the minimum wage. The NDP government had already done that. So now the minimum wage is sitting at $17.40. As of June 1st, 2024.
Yeah.
Lekin the BC rate is already higher than this. Aren't we sitting at more than 1740?
No.
If I'm not mistaken.
I think we're still at 1685.
1675.
Yeah, 75, yeah.
So wage increases is going to be, I see. Okay. So, to is wage pay to...
कुछ नहीं होना ना.
$2,500 का तो आप
इतना सा बढ़ाए पे, इफ यू आर इंक्रीजिंग जस्ट 75 cents पर आवर, इट इज नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स ओवर हियर. नथिंग मच इज चेंजिंग. माइट बी पूरे साल का अगर लगाया जाए तो आपकी वेज सिर्फ $1,500 बढ़ी विद दिस इंक्रीज. राइट, सो इससे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना?
नहीं, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी तो आती नहीं है इसमें, वे जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट रेंट. अगर मैं हाउसिंग की तरफ आऊँ तो जो घरों की कीमतें हैं, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि आप निधि उस फील्ड में हैं, क्योंकि लोगों को अगर मॉर्गेज लेनी है तो आपके पास आएंगे, उनको कितनी इनकम चाहिए होगी कि वो मॉर्गेज ले भी पाएंगे अपने घर के लिए. सो होम्स हैव इंक्रीज्ड बाय एन एवरेज ऑफ 9.4% इन द लास्ट लिटिल व्हाइल.
यस, दैट्स
व्हाट मार्च से लेके अब तक.
हाँ जी, हाँ जी.
अच्छा, टाउन सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है? घरों में हुआ है, टाउन हाउसेज में हुआ है कि कॉन्डोज में हुआ है?
देखो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी थिंकिंग दैट द प्राइसेस हैव कम डाउन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग द प्राइसेस ऑफ हाउसेज हैव नॉट कम डाउन. इट हैज नॉट एट ऑल कम डाउन. हमें वैसे लगता है कि ये घर इतने का था, इतने में बिक गया, बट व्हेन वी रियली सी, व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग द डेटा, सिंस द लास्ट मार्च टिल नाउ, द प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ हाउसेज इन ऑल ऑफ दिस एरिया, वैंकूवर से लेके अगर हम चिली बैग तक चले जाते हैं, द प्राइस ऑफ होम्स हैव इंक्रीज्ड बाय क्लोजर टू 9.4%. घर की बात कर रहे हैं. टाउन हाउस जो हैं, दे आर समवेयर अराउंड 7.6%, एंड कॉन्डोज आर ऑल्सो समवेयर अराउंड क्लोजर टू 7%. सो इट मीन्स हर एक चीज बड़ी है.
तो क्या निधि, अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो इज इट ईजियर फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर अ मॉर्गेज राइट नाउ?
I don't think so.
No.
Nothing has changed.
So it's quite difficult, right?
It is quite difficult. एक तो वैसे ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है.
राइट.
आपको अपना वो भी मेंटेन करना है. राइट. आप ऊपर से एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. मॉर्गेज से लेके गैस से लेके एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव.
सो अब जो कार्बन टैक्स लगाया है उससे
यस
गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं.
और बढ़ेंगी.
और ज्यादा बढ़ेंगी, आगे भी बढ़ेंगी.
यस.
एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल. सुना है मैंने कि लोग खाने पीने में भी अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, एंड यू नो इट्स अफेक्टिंग
एंड देयर ओवरऑल हेल्थ. एवरीबॉडी इज डूइंग 2 to 3 जॉब्स. If you are not doing 2 to 3 jobs, then you are basically on living on your credit cards.
Like disposable income have reduced quite a bit.
Mortgage is taking 60% of your income. जबकि technically जब हम qualify करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपकी जो income है, gross income है, उसका 45% portion होना चाहिए mortgage.
That's it.
Actually 35, because the GDS is for 39%. So 40% up portion
maximum
hona hai. That has gone way up beyond. Like when I am looking at people with refinancing files and everything that they are coming to me, by the end of the term, they will technically owe more to the bank before the term started 2 years ago.
Oh my God.
Yes. It is, everybody must have received their mortgage statement from last year. Whoever is on the variable rate, if they look at it on the first page, it mentions that your mortgage when at maturity, this is the amount due. And that amount due is, you know, because...
Way over what you had.
Yeah, what you originally started.
पिछले साल अगर mortgage outstanding 4 लाख है, तो आज की रेट में 4,08,000 नजर आएगी, या 4,10,000, ज़्यादा बढ़ गई है.
15, depending on the amount.
Because the payments are not able to cover the interest itself.
Yeah.
Principal तो दूर की बात है. Interest ही नहीं cover हो पा रहा, so they keep adding it up to their outstanding mortgage. So the problem arises is the disposable income has reduced so much because tax ke upar tax pad ke jo leftover money bachta hai aur uske upar bhi tum kapdon ke pe tax ke pay kar de ho, food ke upar pay kar de ho, gas, carbon tax, luxury tax, this tax, so many taxes. Ab jahan pe paisa ban pata hai, jaise ghar banaya, renovate kiya ya usko bech diya, flipping tax, uske upar bhi taxes lag rahe hai na, anti flipping tax and this. So there's so many taxes after taxes that the person has got not much left.
Yeah. In my opinion, the government is not looking at the red tape that is in the municipalities, that is controlling and actually basically not allowing so much of building permits to happen. आप उस रेड टेप को तो चेक करो, वो क्यों इतना डिले है? क्यों आपकी म्यूनिसपैलिटीज, इफ अब प्रॉपर्टी टैक्सेस हम सबके इतने हाई हैं, व्हाई कांट दे हायर मोर पीपल टू यू नो गो थ्रू दैट प्रोसेस फास्टर.
अगर प्रोसेस उनका थोड़ा फास्ट हो जाता है ऑब्वियसली पीपल विल बी एबल टू मेक मोर हाउसेस.
एग्जैक्टली.
एंड पीपल विल बी एबल टू मूव इनटू
द हाउसेस राइट. एंड दैट वे ये जो लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज हैं हमारे, ठीक है आप मानते हैं कि आप कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट हाई रख रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट कम से कम ये इतने जो इश्यूज हैं उस अब इनके ऊपर भी आप रेड टेप पे रेड टेप और इंट्रोड्यूस कर रहे हो.
मैं आपसे, आई नो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट रेंटल प्रॉपर्टीज, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बीसी होम फ्लिपिंग टैक्स जो कि पिछले दिनों इंट्रोड्यूस भी हुआ था. उससे पहले आई थिंक दिस टैक्स First came out federally in 2023, and then DVDB sort of, you know, implemented it, and he said that any houses sold, homes sold on or after January 1st, 2025,
yes. अगले साल.
तो इस साल जो भी करना है कर लो. अगले साल आपको उसके ऊपर taxes pay करना पड़ेगा.
हाँ जी.
So. I'm not an economic person, so मुझे नहीं मालूम कि पैसे को किस तरह से देखते हैं. But the entire thing is so convoluted, it's so difficult to understand for regular people, right? कि तो वो कहते हैं कि छोड़ो यार आज जो चल रहा चलने दो.
हाँ जी.
So people are just living for the sake of living. They are not enjoying whatever they are doing and living. Don't you think so?
या सो सी दिस जैसे ये होम फ्लिपिंग टैक्स का लगाया कि 2 years का इन्होंने लगाया हुआ है ना, वरना इफ़ यू सेल इट विद इन 1 year यू हैव टू पे 20% एंड उसके बाद वो डिमिनिश हो जाता है फ्रॉम 1 year टू. सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट्स गोना हैपन इज पीपल विल नॉट सेल द प्रॉपर्टी क्विक इनफ. अगर एक घर देखो, अगर एक घर बिकता है इट इज टू ट्रांजेक्शन, बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड. द लॉयर्स गेट मनी, the mortgage brokers make money, घर की इंश्योरेंस होनी है, they make money, movers make money, real estate agents make money, lot of other
industries make money.
Mm-hmm. Now if all this process is getting delayed because the government wants 20%, they say why the hell other people should make money, why not we make the money. So you see ultimately it's still affecting the government. Jaise marzi kar lo, because see if all the other industries are making money because people are buying selling and all that stuff, there is more money revolving and they will be spending more money. To make money they will be going spending on food, clothing, restaurants, travel and all that. Wo bhi to paisa ghoom ke kahin na kahin tax lag raha hai uske upar, and the government is making money. Why was the use of imposing this? There's no use to it, because I feel so there's not too many people who were selling within this 1 to 2 years period. There was not too many.
But they were,
what was the use of imposing?
I think they were condos that were being built or high rises, jinme ki kuch aisi companies, khas taur pe jo China mein thi, wo buy kar rahi thi bahut zyada. And they needed to stop that. And that happened during, I think, liberal government yahan pe jab thi. Ek to money laundering ka kisa chal raha tha, ek ye bhi chal raha tha. Lekin wo itni der tak to usko nahi kheench sakte hum.
Sahi baat hai.
Yeah. इतनी देर तो ये नहीं आप कह सकते हो ना कि एक ही कंट्री से मनी आ रही है, ये आप नहीं कह सकते हो. आजकल तो रेशो चेंज हो गया है
टोटली.
इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम वन दैट कंट्री ओनली,
राइट?
वी ऑल नो कि इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज,
राइट?
सो आप उस चीज का जो है रेप्रिकॉशन इतने सालों बाद अब क्यों डाल रहे हो? अब जबकि मार्केट में, अब आप ये भी सोचो कि इन माई ओपिनियन जो एक ब्रांड न्यू इमिग्रेंट आता है, हर कोई तो ही अपने साथ लाखों डॉलर लेकर आता है, डाउन पेमेंट मैं लेकर आऊंगा, घर खरीदूंगा.
नहीं नहीं, नॉट एट,
मुश्किल से लेस देन 1% आते हैं, राइट? अगर एक लैंडलॉर्ड मल्टीपल प्रॉपर्टीज जिसके पास ओन करने की क्षमता है, अगर आप उसके ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, वो कहेगा मैंने ओन ही नहीं करनी वो प्रॉपर्टी. देखिए द रीजन व्हाई दिस होल टेनेंसी एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन बिफोर अप टिल नाउ वाज बिकॉज पीपल हु वर लिविंग हियर फॉर लॉन्गर टाइम दे हैड मोर इक्विटी स्पेयर मनी दे वुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड दे वुड होल्ड ऑन टू दोज प्रॉपर्टीज. वो एक शेल्टर बनता था फॉर द न्यू इमिग्रेंट. बट अगर आप हर एक चीज के ऊपर बीच में से अपना लगाते जाओगे भी मैं यहाँ से टांका लगा के ये अपना फिट कर लूँ यहाँ पैसे बना लूँ देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट एवरीथिंग.
सो एज आई मेंशन्ड देयर इज वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बाइंग प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग विद इन वन ईयर
राइट
और टू ईयर्स.
आप इस फील्ड में हैं आपको मालूम है
वेरी फ्यू पीपल राइट ओवर देयर. सो देयर वाज नो यूज ऑफ इम्पोजिंग दिस राइट एंड व्हाट वी फील इज कि इससे whatever even that was 1-2% of people who were doing it now they will just hold off to selling it. Right, it's not helping in any way for the housing affordability or more housing coming on the market. Actually kam ho jana.
I also wanted to ask you about you know Bank of Canada ke rates wagaira kuch afwahein ye hain ki कम होंगे कुछ ये है कि ये कम नहीं होने वाले. सो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड कम बैक. निधि एंड सनी बिंडर आर इन द स्टूडियोज टुडे. अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हो 604-280-1200 या 604-299-8863 हमारे टेलीफोन स्पाइस रेडियो रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप. गपशप का प्रोग्राम है. सनी एंड निधि बिंडर आज हमारे स्टूडियोज में हैं. वेंसडे वाले दिन फर्स्ट वेंसडे को उनसे मुलाकात होती रहती है. क्या आपस में क्या बात कर रहे थे?
मैंने उनको कहा कि काम डाउन उनको क्वेश्चन पूछने दो. तो आप लगे हुए कि मैं बता दूं सबको कि क्या हो रहा है लैंड और टेनेंट के साथ क्या हो रहा है.
वो तो झगड़ा चलता रहेगा. पहले मुझे ये बताइए ये जो ये मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये कमबख्त इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की जान अटकी हुई है उसमें.
कैरेट दिखाई जा रही है.
अच्छा सो अब ये निधि भिंडर की जो है
अपनी
ओपिनियन जो है वो आप प्लीज सुन ले है ना जी. वो ये है कि दे विल प्रोबेबली डैंगल दिस लिटिल स्मॉल कैंडी.
अच्छा
कि वेरिएबल रेट 0.25 बिप्स कम कर देंगे एंड दैट्स इट
इस साल के लिए.
या नो फर्दर रेट कट्स कमिंग इन माय ओपिनियन अनलेस कि समथिंग हैपेंस बिकॉज आर GDP growth has fallen back a lot.
Achha.
So because economy has slowed down a lot.
So somebody said this very interesting thing which I'd never thought is tarike se, right? Ki iske do pehlu hain. Dono ko aap sun lijiye and dekhiye kaun sa pehlu aapko pasand hai. Interest rates kam hain to logon ke paas ghar ke jo payment karni hai wo kam ho gayi. Interest rates kam hain isliye उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए. वो पैसे उन्होंने खर्च किए छुट्टियों पे, खाने पे, लोगों से मिलने जुलने में, पार्टियों में वगैरह वगैरह. तो दैट मीन्स इकोनॉमी बढ़नी शुरू होगी, लोगों को जॉब्स मिलने शुरू हो गए. दैट्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट.
हाँ जी.
द नेगेटिव एस्पेक्ट उसका मैं देखती नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर उनको वो पैसा नहीं कमा सकते. तो लेंडर्स के पास कुछ है नहीं आपको आपको देने के लिए इंटरेस्ट लगाने के लिए. सो कई लोगों को जाना पड़ता है. लाइक फॉर एट दिस टाइम आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज बोरोइंग मनी एट 10-12%. एक जमाना था लोग 20-25% पे लोन उठाते थे.
हाँ जी हाँ जी.
आई मीन दैट वाज जस्ट बिफोर आवर इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप्ड टू 0%.
हाँ जी हाँ जी.
तो उसमें किसको फायदा है? उसमें ज्यादा लोगों को तो फायदा नहीं है. उन्हीं को फायदा है जो कि जिनके पास बड़े बड़े पैसे पड़े हैं और वो लोन दे सकते हैं.
मैं आपको एक इसका ना सिंपल एक आंसर सिंपल बताती हूँ
जी.
बैंक्स मेक मच मोर मनी व्हेन यू स्पेंड ऑन योर क्रेडिट कार्ड.
अच्छा.
When you borrow on your line of credit, they do not make money from mortgage.
Achha.
They actually, right now, even at this moment, because most of the mortgages that were bought 2 years ago from now, 3 years ago from now, 4 years ago from now, at a 2%, they have already reached their trigger rate. So, प्रिंसिपल इज नॉट कमिंग डाउन. सो टेक्निकली अगर आप ये कहें कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एनवायरमेंट हो या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनवायरमेंट हो, बैंक पैसे कमाती है नो मैटर वॉट. क्योंकि देखो अगर आप मॉर्गेज से नहीं कमा रही है तो वो क्रेडिट कार्ड से कमा रही है बिकॉज पीपल आर गोइंग एंड स्पेंडिंग यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स. चाहे वो बैलेंस ईच मंथ पे ऑफ करते, कितने लोग हैं आप मेरे को बता दो, मैं अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स की तो बात नहीं, मैं वैसी जनरली कह रही हूँ कि कितने लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड बैलेंस जीरो करते हैं। कुछ तो बैलेंस चलता है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट है, 21%, 22%, 23%, अगर आप उसकी एमर्टाइजेशन करो बैंक के हिसाब से, द एमर्टाइजेशन इज मोर देन 25 years. सो इन माई ओपिनियन दे आर स्टिल मेकिंग लॉट ऑफ मनी ऑफ यू, लेकिन वो तंग हैं क्योंकि उनको ये है कि डिफॉल्ट ना हो जाए। देखिए मॉर्गेज में क्या होता है, डिफॉल्ट का होता है, और लकीली जो डर था, जितना डर था कि हमारा फोरक्लोजर रेट बढ़ेगा, हमारा डिफॉल्ट रेशो बढ़ जाएगा, कनाडा का डिफॉल्टिंग एंड फोरक्लोजर रेट हैज नॉट सरपास्ड 1%.
अगर उसके पीछे कारण क्या है,
बिकॉज वी कैनेडियन समहाउ मैनेज,
people are doing multiple jobs right, you would have noticed that the unemployment rate has dropped. Why, what's the reason behind that? ye to hai na ki jobs bahut zyada aa gayi hain, so the point being is people are doing multiple jobs, part time jobs bahut badh gayi hain, that uske karan unemployment rate kam ho gaya, that's what people are doing, people are trying to find ways that they can
continue with their
living in Canada, right? Yeah. That's what's going on. But now what's happening is everything is reaching a stage where people are getting tired and they can only hang on to so much. Rubber band ko utna hi khinch sakte hai ek time ke baad snap hogi. Wo snapping moment is coming.
Moment coming, yes.
Is coming because a lot of mortgages are being
renewed
now, and they will be renewed at much higher rates, and a lot of people will not qualify. They will not qualify. So what's going to happen?
Qualify, won't be able to even make the payments.
Yeah. So first of all, they won't qualify. So the A banks, the big banks, RBC, TD, they will not give them financing. They might go to a B banks or private lending. It means ki now they have to make much more payments. And how will they bring that kind of a money? They have to do multiple jobs right over here to bring that money. But now everything is reaching a trigger over here. Even जो जिनके अपने businesses हैं वो भी नहीं hang on कर पा रहे, because उनके भी खर्चे बढ़े हुए हैं. Nothing has become cheaper, right? Rent बढ़ गए हैं, commercial offices के rent बढ़ गए हैं, commercial offices की payments बढ़ गई हैं. It's not only residential, commercial, जैसे मेरा office है, my mortgage payment has increased so much, right? So what happens is you will find ways of reducing your expense. Yeah. And the easiest way to reduce your expense is laying off an employee. Easiest way. I know that is hiring someone also makes you good money because it gives a big leverage. But on the other note, jab ye problem chal rahi hai, the easiest way is to let go of an employee because wo seedha hi aapko 50, 60, 70,000 ka farak padta hai.
These days students को jobs क्यों नहीं मिल पा रही हैं? Because जो हम जैसे landlords हैं, in order to meet our requirements, हम ही दो दो तीन तीन jobs कर रहे हैं. So it is really necessary that we come out of this vicious cycle.
और वो उस vicious cycle से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं?
ये तो पुलिस से पूछे, जूडो से पूछे, उनको बिठाएं, हम बात करें,
इनसे बात करनी पड़ेगी,
हम तो बात करनी पड़ेगी.
That is true. So you know, all in all, it's all in all, everything isn't lost.
It isn't lost, Sushma ji, but I still feel, I don't know why, I still have very positivity towards right. this, because I think now it took 2 years for people to understand
right.
that we are going to stay in this yeah. high rate of interest environment.
Right.
And in that way, people have learned either by saving, by cutting down on their living expenses, or by doing extra jobs, how to bring equity.
Yeah, maybe some people have instead of going away on holidays that much, they've sort of
yes.
cut down on it.
And
wo bhi ek reason ho sakta.
Another positive thing I have seen among people is this, that you know, this high rate of interest environment has taught them actually ki, you know, we really need to kind of get out of the house and work.
That's true.
क्योंकि जो laziness आ गई थी
yeah.
for that little period, वो laziness अब वो निकल गई है लोगों के अंदर.
देखो आजकल तो सिया दे भी लेजी नहीं रह गई है, वो कुछ ना भी हो तो भी चिट्ठियां आ
जाती है, आपको लेटर्स आ रही होंगी सबको,
आपने $200 देने हैं, $500 देने हैं, ये सब ली थी वो देनी है, सो इवन दे आर नॉट लेजी नाउअडेज।
आई डिड द बेस्ट थिंग इन दिसंबर, वी हैड बोरोड $60,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट,
हां जी आपने सर,
इफ आई हैड, इफ यू पे सीबा का लोन, यू पे बाय दिसंबर, यू डोंट हैव टू पे द $20,000,
हां जी हां जी,
सो वी पेड इट इन दिसंबर,
नाइस,
सो आई थॉट टू माय सेल्फ, अगर आप सनी को फोन करना चाहते हो आप उनका नंबर लिख लीजिए, अगर आप घर बेचना चाहते हो खरीदना चाहते हो 778-234-2000, और निधि आपको हेल्प करेंगी अगर आप मॉर्गेज लेना चाहते हो, क्योंकि आजकल तो HSBC एंड रॉयल बैंक एक हो गया ना,
हाँ जी
मर गया एक HSBC,
बट आई हैव हर्ड कि दे विल स्टिल कीप अप विद देयर लो इंटरेस्ट पॉलिसीज,
रियली,
एंड दे विल स्टिल कीप डूइंग दैट, सो रॉयल बैंक इज गोइंग टू लेट HSBC रन देयर साइट, यस,
इंटरेस्टिंग, तो निधि को आप फोन कर सकते हैं 604-999-2111. थैंक यू गाइज फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज टूडे. And we'll look forward to seeing you again.
Yes, thank you so definitely.
Much. Thank Thanks. You for having us.
Thank you.
इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं. वो सभी बातें जो आज आपकी नजरों में अटकी, खटकी और दिल में समाई उन सबको लेकर we'll be here tomorrow. Om Arora हमारा साथ देंगे. Stay tuned for the Drive Home Grind with DJ Flight and Maya right here on Spice Radio. हमारा प्रोग्राम आप ये आने वाला प्रोग्राम और अगला रेडियो रिमझिम और स्पाइस दोनों पर सुन सकते हैं. So stay tuned for the Drive Home Grind with DJ Flight and Maya right here on Spice Radio and Radio Ramcham.